मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को डॉक्टर विजय अग्रवाल का नमस्कार। मित्रों, आज 3 सितंबर 2015 है और आज के इस afeis.com के डेली ऑडियो गाइडेंस में हमेशा की तरह मैं आप सबका हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और साथ ही दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं अपने उन 10 नौजवान साथियों का भी जिन्होंने एकेडमी के अक्टूबर 2016 में होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन नौजवान साथियों के नाम हैं स्वर्णिमा वर्मा लखनऊ से, सीएस इंदा बेंगलोर से, ई श्रीहर्ष हैदराबाद से, राधा कुमारी बिनिया बिहार से, शिवम पुरोहित भिंड से, किशलय चंद्र दिल्ली से, रामनंदन यादव ग्वालियर से, प्रमोद कुमार कोलकाता से, संदीप कुमार हरिद्वार से और सिद्धार्थ कुमार गया बिहार से। तो स्वर्णिमा, सीएस इंदा, ई श्रीहर्ष, राधा, शिवम, किशलय, रामनंदन, प्रमोद, संदीप और सिद्धार्थ, आप सभी साथियों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग अभी फिलहाल सिविल सर्विस के जो प्री एग्जाम हुए हैं उसके बारे में बहुत विस्तार से बात कर रहे हैं और मैं इसके बारे में अभी आपसे लगातार बातें करता रहूंगा, लेकिन लाइफ मैनेजमेंट वाले पॉइंट के बाद। तो दोस्तों, सबसे पहले अब मैं आता हूं लाइफ मैनेजमेंट वाले पार्ट पर। हम लोग कैपेबिलिटी की बातें कर रहे हैं। सबसे बड़ी दिक्कत हिंदुस्तानी दिमाग के साथ दोस्तों ये है, जिसमें प्लीज मुझे भी शामिल करके चले, वो ये है कि हम सभी एक तरह से भाग्य पर कुछ जरूरत से ज्यादा ही भरोसा करते हैं। मैं जरूरत से ज्यादा इसलिए कह रहा हूं, तो आप सोच सकते हैं कि क्या थोड़ी बहुत जरूरत भी होती है। मैं मानता हूं कि थोड़ी बहुत जरूरत भी होती है। मैं कभी बताऊंगा कि वो जरूरत कब होती है, कैसे होती है, लेकिन फिलहाल मैं केवल इतना कह दूं कि अगर तूफान आ रहा हो तो बस जरूरत इस बात की सोचने की है कि ये रहेगा नहीं, चला जाएगा, दैट्स ऑल। बस कि भाग्य आपको उस समय आपका साथ देता है। तो जहां भाग्य पर हम बहुत ज्यादा विश्वास करने लगते हैं, या बहुत ज्यादा क्या मतलब, सब कुछ पूरी पतवार उसी को सौंप देते हैं, तो स्वाभाविक रूप से फिर हमारा अपने ऊपर से विश्वास कम हो जाता है। हमारी कैपेबिलिटी पर हमारा विश्वास ही नहीं रह जाता। हम यही सोचते हैं कि भैया जो कुछ लिखा है वही होगा, तो हमारे करने से क्या फायदा। और मित्रों, हम इसी नजरिए से उन लोगों को भी देखते हैं जो सफल हो गए हैं। देखिए, जो सफल व्यक्ति होता है, अगर वो बहुत हांकने वाला नहीं हुआ तो आपके सामने बार बार तो ये नहीं कहेगा कि भैया मेरे सामने ये दिक्कतें आई, मैंने ये तकलीफें उठाई, यहां स्ट्रगल किया, वो नहीं कहेगा। वो तो सीधी सी बात है कि आप देखिए, समझिए, आप उसे कितने मार्क्स देते हैं लाइफ में, दैट साल वो अपना काम करते चला जा रहा है, खत्म हो गई बात। लेकिन हम क्या सोचते हैं कि यार ये क्या इसका जोरदार भाग्य था, देखो इसके साथ वो हो गया, इसके साथ वो हो गया, इसके साथ वो हो गया। दोस्तों, ये जो हो गया जो हम कहते हैं, ये अपने आप नहीं होता है। इसको समझने की कोशिश कीजिए प्लीज, और आप लोगों को समझना ही चाहिए क्योंकि आप अभी यंग हैं, अपने कैरियर के एक तरह से बनाने के प्रोसेस से गुजर रहे हैं। मित्रों, जिस दिन इस बात को आप समझ लेंगे, आपका भाग्य आपकी मुट्ठी में होगा। और मैं तो ये मान करके चलता हूं कि हस्तरेखा यही तो कहती है कि जो आपका भाग्य है वो आपकी मुट्ठी में है, हथेलियों में नहीं, आपके हाथ में है। आप जैसा करना चाहेंगे आप वैसा कर सकते हैं। लेकिन मित्रों, जब हम कहते हैं कि जैसा करना चाहेंगे वैसा कर सकते हैं, तो फिर हमें अपने मूल्यांकन के जो तत्व हैं उन पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। मैं आज आपको इसी पर थोड़ा सा इशारे से बात करना चाहूंगा ताकि आप उसे समझ सकें। आप कुछ भी करना चाह रहे हैं, कुछ भी करना चाह रहे हैं, देखिए मेरे लिए तो ये मायने कम से कम नहीं रखता है कि आप मजदूरी करना चाह रहे हैं, आप खेती करना चाह रहे हैं, व्यापार करना चाह रहे हैं या आईएएस बनना चाह रहे हैं। मेरे लिए तो जो जिंदगी का फलसफा है वो ये है दोस्तों कि जो जिंदगी है वो जीने के लिए है। ये बेहद खूबसूरत है, चाहे जैसी भी हो, बेहद खूबसूरत है। और जिंदगी को जीने का फलसफा केवल ये है कि हम जो टाइम बिता रहे हैं, क्योंकि जिंदगी तो टाइम से बना है, हम ये जो वक्त बिता रहे हैं इसको किस तरीके से बिता रहे हैं। और वक्त हमारा कैसे बीतता है, ज्यादातर काम से ही बीतता है। हम हर समय काम करते रहते हैं। अगर हम सोने के घंटे को छोड़ दें, हालांकि सोने को भी मैं मतलब स्लीपिंग उसको भी मैं एक बहुत बड़ा काम मानता हूं, सबसे जरूरी काम मानता हूं, जो हमारी जिंदगी का लगभग लगभग 30% ले लेता है नहीं बल्कि हम देते हैं और देना ही चाहिए, वो भी मेरे लिए एक काम है। लेकिन मेरे लिए सिर्फ ये मायने रखती है कि मैं अपने काम से कितना प्यार करता हूं, क्योंकि जो व्यक्ति अपने काम से प्यार करेगा, मान करके चलिए कि अपने वक्त से प्यार कर रहा है, क्योंकि काम तो वक्त से जुड़ा हुआ है या वक्त काम से जुड़ा हुआ है। जब मैं अपने काम से प्रेम करता हूं, प्यार करता हूं, तो मैं अपने समय से प्यार करता हूं, और जब मैं अपने समय से प्यार करता हूं तो ऑटोमेटिक ही मैं अपनी जिंदगी से प्यार करने लगता हूं। फिर मुझे जिंदगी बहुत प्यारी लगने लगती है, खूबसूरत हल्की लगने लगती है, और सच पूछे तो रुई की बोरी की तरह हल्की, फुसफुसी, कोमल, नर्म लगने लगती है। काम से प्यार, ये सबसे इंपॉर्टेंट मायने रखता है। तो मित्रों, जो काम होता है इसको थोड़ा सा इनलार्ज करके डिफाइन कीजिए। काम का मतलब ये नहीं कि एक ऐसा काम करना जिसके बदले में आपको कुछ मिल रहा हो, चाहे मजदूरी मिल रही हो, चाहे वेतन मिल रहा हो, चाहे प्रॉफिट मिल रहा हो, नॉट एट ऑल। काम का मतलब है डूइंग समथिंग, एनीथिंग, एनीथिंग। यहां तक कि अगर आप मेरे इस ऑडियो को भी सुन रहे हैं तो आप एक काम कर रहे हैं, और उसका नाम है ऑडियो को सुनना। ऑडियो क्यों सुन रहे हैं, उसके बहुत से रीजन है, क्योंकि मेरे पास मेल आते हैं, किसी को इससे न्यूज मिल जाती है, कोई मोटिवेशन वाले पार्ट के लिए सुनता है, कोई सिविल सर्विस के प्रिपरेशन के लिए सुनता है, कोई जनरल स्टडी नॉलेज बढ़ाने के लिए सुनता है, वो अलग बात है। लेकिन सवाल यह है कि आपने अगर इसे सुनने का फैसला किया है, या आपने कुछ भी काम करने का फैसला किया है, तो ये आपका फैसला है और आप उसे एंजॉय कीजिए। मित्रों, यहां आपको एक बात और भी आपके दिमाग में आ सकती है, वो ये कि सर जरूरी नहीं कि सारी चीजों के फैसले हम ही करते हैं। कभी हमारे फैसले हमारे मां बाप माता पिता के इच्छा पर डिपेंड करते हैं, कभी हमारे फैसले बॉस की इच्छा पर डिपेंड करते हैं, कभी हमारे फैसले परिस्थितियों से मजबूर होकर के ही हमें करने पड़ते हैं। तो उससे हम क्या करें, कुछ नहीं, सारी चीजें एक हैं। ये बस सोचिए, आप जब अपनी तरफ से भी फैसला करते हैं ना, तो कुछ दिनों के बाद आप उससे उबने लगते हैं। मित्रों, आप सोच करके देखिए, मैं एक छोटा सा आपको उदाहरण देता हूं कि एक लड़का जो 12th करता है, पीएमटी में बैठता है या पीईटी में बैठता है, और उसमें टॉप करता है या उसमें बहुत अच्छे रैंक पर आता है, और पता लगता है कि उसका पीएमटी के लिए सिलेक्शन हो गया, सीपीएमटी के लिए हो गया, और इंडिया के बेस्ट इंस्टीट्यूशन में वो डॉक्टर की पढ़ाई कर रहा है, एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहा है, या इंजीनियरिंग में हो गया और इंडिया के बेस्ट आईआईटी में वो पढ़ाई कर रहा है, बेस्ट इंस्टीट्यूट जो भी आप कह लीजिए पढ़ाई कर रहा है, तो कितना खुश हुआ होगा। और इसने पीएमटी और पीईटी सीपीएमटी को क्वालिफाई करने के लिए कितना दम लगाया होगा, और जिस दिन रिजल्ट आया होगा उस दिन बहुत खुश हुआ होगा, बहुत अच्छा लगा होगा उसको। और जब वो एमबीबीएस कर लेता है, या कह लीजिए कि बी कर लेता है, या यहां तक कि एमई कर लेता है, या एमडी कर लेता है, जो भी कर ले, उसके बाद फिर वो सडन मान लीजिए कि सिविल सर्विस में बैठता है, तो अब ये केवल सोचने की बात है कि फिर ऐसा क्यों हुआ। वहां तो उसने अपनी चॉइस से किया और सफलता भी हासिल की, कुछ समय बाद हुआ ना कि उसको लगा कि नहीं इससे ये बेटर है। देखिए, मैं सही और गलत की बात बिल्कुल नहीं कह रहा हूं, बिल्कुल उनको लगा उस स्टेज पर जाने के बाद कि मुझे डॉक्टर की बजाय सिविल सर्वेंट बनना चाहिए, भारत सरकार ने अनुमति दी है, स्वागत है। इंजीनियरिंग करने के बाद, एमटेक करने के बाद, या इंजीनियरिंग के बाद उन्होंने एमबीए किया, वो भी किसी आईआईएम से किया, और इसके बाद फिर लगा कि नहीं मुझे सिविल सर्वेंट बनना चाहिए, तो बिल्कुल स्वागत है, आप बनिए। यहां भी आपके टैलेंट का कुछ ना कुछ उपयोग तो होगा, ये बात अलग है कि फिर उस प्रोफेशनल टैलेंट का क्या होगा जो आपने अपनी इच्छा से चुना था, वो एक अलग मुद्दा है। तो सवाल दोस्तों ये नहीं है कि वो मेरा चुना हुआ नहीं था। जब आपका खुद का चुना हुआ होता है, तब भी आप कुछ समय के बाद उससे उचट जाते हैं, ऊब जाते हैं, और ये ऊब जाना और उचट जाना ही अपने काम से प्रेम करने के विरोध में खड़ी हुई एक मनोभावना है। याद रखिए, जो लोग अपने जीवन में जो सफलता हासिल करते हैं वो कैसे करते हैं, वो चुनते हैं, लाइफ में रिस्क लेते हैं, अगर रिस्क नहीं भी लेते हैं तो एक चुन लेते हैं और फिर उस पर चलते चले जाते हैं। जिसको मधुशाला में एक बहुत खूबसूरत पंक्तियां हैं, पता नहीं मुझे अभी याद आएंगी भी कि नहीं पूरी, जिसे अमिताभ बच्चन जी समय समय पर दोहराते भी रहते, जब उनसे कहा जाता है कि आप मधुशाला सुनाइए तो वही इन पंक्तियों को अक्सर बताते हैं। उसकी पहली लाइन ये है कि लोग मधुशाला जाने के लिए अलग अलग रास्ते बताते हैं और मैं बताता हूं कि राह पकड़ तू एक चला चल पा जाएगा मधुशाला, तुम केवल एक रास्ते पर चलो, उसको पकड़े रहो और चलते रहो, मधुशाला मिल जाएगी। यहां मधुशाला का मतलब कोई शराब खाना नहीं है, मधुशाला का मतलब वो एक ईश्वर को प्राप्ति भी है या लक्ष्य की प्राप्ति भी है। तो मित्रों, ये जो मैं जिस लॉजिक की बात कर रहा हूं ना, वो लॉजिक केवल ये है कि हम अपनी कैपेबिलिटी, इससे पहले कि हम अपनी कैपेबिलिटी का यूज कर सके, हम एक लॉजिक को देकर के उस अपने कैपेबिलिटी की जो खुदाई होनी चाहिए, या जिसे मैं कहूं कि जो अंडरग्राउंड वाटर है उस तल को टच करना चाहिए, उससे पहले ही हम उससे अपने को विड्रा कर लेते हैं और वहीं हम सरेंडर कर देते हैं। फिर आपको लगता है कि मुझ में दूसरी कैपेबिलिटी है, शायद मैं ये कर लूं, शायद मेरी कैपेबिलिटी यहां होगी। मित्रों, कभी कभी वो हो भी जाती है, देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन जो आपने छोड़ा है उसके पीछे ये रीजन उतना नहीं है कि आप में कैपेबिलिटी नहीं थी, उसके पीछे मेन रीजन ये होता है कि आपने उस कैपेबिलिटी के लिए जो कुछ करना चाहिए था वो आपने किया नहीं, ठीक से उसको समझा नहीं, और नतीजा ये हुआ कि आप उसमें फेल हो गए। मित्रों, मेरे पास तो, मेरे साथ तो सच पूछे तो आप सब बड़े नजदीकी से जुड़े हुए हैं। मेरे पास कल की बात है या परसों की बात है, एक SMS आया, और SMS ये आया कि सर, मैं अभी हॉस्टल में रह रहा हूं या रह रही हूं, जो भी कह लीजिए, और मेरे माँ बाप का, मेरे माता पिता का सपना ये है कि मैं ये बन करके उन्हें उसे पूरा करूं, लेकिन यहां मेरा मन नहीं लग रहा है और मैं यहां रह नहीं सकता, रह नहीं सकती, तो बताइए मुझे क्या करना चाहिए। अब इसको थोड़ा सा लॉजिकल तरीके से सोच करके देखिए, आप छोड़िए ना फिर माता पिता के सपने को पूरा करने का सपना, आप अपना सपना पाल लीजिए, छोड़ करके चले जाइए, कुछ और कर लीजिए। अरे जब आपने एक फर्म डिसीजन ले लिया कि मुझे अपने माता पिता का सपना पूरा करना है, अब वो सपना क्या है मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो डेफिनेटली पढ़ाई से जुड़ा हुआ है, और उस पढ़ने के कार्य के लिए आपको अपने घर से अलग होकर के कहीं और जाना पड़ा है, ये मैं समझ पाया उसमें, तो सीधी सी बात है कि अब दिमाग को उधर से बंद कीजिए ना, दिमाग को दुनिया भर के दरवाजे क्यों दिमाग में खोल करके रखते हैं, बंद कर दीजिए उसको, ईंटें चुनवा दीजिए, खत्म हो गई बात, उधर से सोचना बंद। अब जो करना है माता पिता के सपने को पूरा करना है, तो अब यहां अपने को डेडिकेट कीजिए ना, यहां लगाइए, कैसे नहीं होगा, तब जाकर के उस कैपेबिलिटी को पता लगेगा कि नहीं भैया ये तो पिंड छोड़ने वाला नहीं है, ये तो लगा रहेगा, ये तो जमा रहेगा, तो इसको तो कुछ दो तभी बात बनेगी, बस दैट्स ऑल, बहुत सिंपल सी चीज है। तो मित्रों, कैपेबिलिटी को आप, पहली बात और सबसे बड़ी बात जो मैं आज कहना चाह रहा हूं और ये कह के समाप्त भी करूंगा, वो ये कि दूसरों का गुलाम मत बनाइए, कैपेबिलिटी को भाग्य का भी गुलाम मत बनाइए, कैपेबिलिटी को आप अपना गुलाम बनाइए कि मैं करूंगा, और फिर करूंगा से बात नहीं बनेगी, उसकी टेक्निक्स होती हैं, उस टेक्निक के आधार पर आप करें। तो दोस्तों, एक तरीका जो एक आधार कह लीजिए आप में क्या कैपेबिलिटी है इसको जज करने का, जो मुझे लगता है वो हो सकता है, वो ये है कि आप देखिए कि आप किस काम को बिना उबे हुए, बिना थके हुए लंबे समय तक कर सकते हैं, बस खत्म हो गई बात, जिसमें आप थकते नहीं हैं, जिसमें आपको ऊब नहीं होती, आप मान लीजिए कि ये मेरी कैपेबिलिटी है। अब आप कहेंगे कि सर कि मेरे को तो सोने में ऊब नहीं होती, मेरे को तो दोस्तों के साथ गप्पे मारने में ऊब नहीं होती, तो इस तर्क को मत लाइएगा, फिर इस तर्क के जवाब बड़े दूसरे तरीके से हो जाएंगे और उसके जवाब में मैं अपने इस समय का इस्तेमाल नहीं करना चाहता। मित्रों, आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो दोस्तों, आज के लाइफ मैनेजमेंट वाले पार्ट में इतना ही, अब मैं आता हूं अपने नेक्स्ट स्टेज पर जो AIR न्यूज का स्टेज है। दोस्तों, कल के AIR न्यूज में आपने सुना कि कुछ खास बातें नहीं थी जिनको लेकर के हम बड़े विस्तार से आज चर्चा कर सके। श्रमिक हड़ताल की बात थी, आपने देखा होगा कि लगभग मैं समझता हूं कि 50% मोर देन 50% जो टाइम था वो श्रमिकों के हड़ताल को लेकर निकल गया, और उससे जो अनुमान है कि यहां यहां सफल हुआ, और इसकी एक डिटेलिंग थी और डिटेलिंग होनी भी थी क्योंकि एक बहुत बड़ी बात थी श्रमिकों का हड़ताल होना, क्योंकि श्रमिक भी हमारे देश के नागरिक हैं, हमारे देश के हिस्से हैं और अर्थव्यवस्था के बहुत बड़े आधार हैं। इसी से अंदाज कर लीजिए कि कुछ श्रमिकों के हड़ताल करने से एक दिन में 25,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया, ये आज के अखबारों में आपने पढ़ा होगा, तो वो इंपॉर्टेंस तो है, वो बिल्कुल लोकतंत्र है और लोकतंत्र में सभी को अपनी मांगे रखने का अधिकार है और श्रमिकों को भी अपना अधिकार है, ठीक वैसे ही जैसे पटेल समुदाय जो पाटीदार समुदाय है उसको आरक्षण के मांग करने का अधिकार है, राइट। ये डेमोक्रेसी है और आपको सिविल सर्विस की तैयारी में यही एटीट्यूड लेकर चलना चाहिए। लेकिन होता क्या है दोस्तों कि जैसी परिस्थितियां बदलती हैं वैसे चीजों को बदलना चाहिए। देखिए भारतीय संविधान की हम यही सबसे बड़ी विशेषता कहते हैं कि यह लचीला भी है और कठोर भी है। कठोर क्यों है, आपने पढ़ा है कि इसके आत्मा में परिवर्तन नहीं किया जा सकता और सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो जाएगा। लचीला इसलिए कि हमारे पास 100 से अधिक संविधान संशोधन अभी तक हो चुके हैं 60 ईयर्स में 100 से अधिक संशोधन हो चुके हैं, मतलब जैसे जैसे जरूरत पड़ रही है समय बदल रहा है उसके अकॉर्डिंगली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी बदल रहा है। और व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन इज रिफ्लेक्टेड इन लॉ एंड ऑर्डर, लॉ कानूनों में, एक्ट में, इसी में कॉन्स्टिट्यूशन रिफ्लेक्ट होता है। अब आप देखें कि जिस समय ये श्रमिक संघों की स्थापना की गई और हमारे जो लेबर लॉ बने थे, डेफिनेटली वो देश की आजादी के बाद का दौर था, सोशलिस्ट पैटर्न की सोसाइटी की हम बात कर रहे थे, खासकर जवाहरलाल नेहरू तो सोशलिस्ट विचारों के, यहां तक कि कम्युनिस्ट विचारों से बहुत ज्यादा प्रभावित थे और भारत पर रशिया का प्रभाव भी बहुत ज्यादा था, इसीलिए फिर हमने एक ऐसा पैटर्न अपनाया इकोनॉमी का कि जिसमें जो हमारे श्रमिक हैं, जो श्रम पर आधारित जो काम कर रहे हैं, मजदूरों का शोषण न हो। और मेरे फर्स्ट बैच और सेकंड बैच के स्टूडेंट ये जानते हैं कि मैंने उनको मार्क्स की जो थ्योरी है उसके आधार पर इस तथ्य को बहुत अच्छे से समझाया भी है और वहां इसे आप बहुत अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं। तो मजदूरों को शोषण से बचाने के लिए, पूंजीपतियों के शोषण से बचाने के लिए, जो अगर मार्क्स कार्ल मार्क्स की भाषा में हम लोग बात करें तो उनको कुछ विशेष अधिकार दिए गए, वो दौर था। लेकिन आप देखते हैं कि 1980 के बाद पूरी दुनिया में, केवल भारत में नहीं बल्कि भारत में तो कहना ही नहीं चाहिए बल्कि पूरी दुनिया में परिवर्तन होने शुरू हुए, आर्थिक सिद्धांतों में परिवर्तन आना शुरू हो गया, जो एक तरह से उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति रीगन थे और ब्रिटेन की प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर थी, उनको उन्होंने जो थ्योरी दी पॉलिटिकल और इकोनॉमी की उसकी वजह से धीरे 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 आर्थिक नीतियों में बदलाव दुनिया के देशों ने लाना शुरू किया, भारत में भी शुरुआत हुई। और डेफिनेटली 1990 तक पहुंचते पहुंचते तो पूरी दुनिया एक तरह से ग्लोबलाइजेशन के दौर में आ गई। ग्लोबलाइजेशन का मतलब है कि इस दुनिया के मार्केट एक हो गए। अब स्वाभाविक है कि जो भारत की अर्थव्यवस्था है अब केवल अपने ही परिस्थितियों से संचालित नहीं हो सकती। भारत की जो अर्थव्यवस्था है या दुनिया के किसी भी देश की जो अर्थव्यवस्था है वो दुनिया के दूसरे देशों की अर्थव्यवस्था से भी संचालित होती, चाहे वो ग्रीस जैसा छोटा सा ही 125 करोड़ की आबादी वाला देश क्यों ना हो। तो ऐसी स्थितियों में जब इंटरैक्शन इतना ज्यादा बढ़ चुका है, मार्केट का भी बढ़ चुका है, इंडस्ट्री का भी बढ़ चुका है, लेबर का भी बढ़ चुका है, वेजेस का भी बढ़ चुका है, प्राइजेस का भी बढ़ चुका है, तो ऐसी स्थिति में स्वाभाविक रूप से जो पुरानी सिचुएशन को लेकर के जो लॉ बने थे वो उतने बेहतर, उतने मौजू हमारे लिए नहीं हो सकते। तो अब ऐसी स्थिति में जहां एक ओर पूंजीपति या उद्योगपति या सरकार को सोचना है, वहीं दूसरी ओर हमारे श्रमिकों को भी सोचना होगा कि अब वो कैसी बातों को, कैसी चीजों को लेकर चलें। क्योंकि अगर पुरानी ही बातों को हम लेकर के चलते रहेंगे तो स्वाभाविक तौर पर फिर नए के मुकाबले करने के लायक हम, नया का मुकाबला करने के लायक हम नहीं रह जाएंगे। और एक दिन होगा क्या, एक दिन हम बाहर हो जाएंगे, मार्केट से बाहर हो जाएंगे। आपको मालूम है कि हमारे कितने जो यूरिया के कारखाने थे वो पहले बंद हो गए थे, 3-4 महीने पहले भारत सरकार ने निर्णय लिया कि नहीं उन्हें हम फिर से शुरू करें। वो बंद क्यों हो गए थे, उसके कारण हो, तो कारण में लेबर कितना होता है, मार्केट कितना होता है, टेक्नोलॉजी कितना होता है, ये सबका अपना अपना योगदान है। लेकिन डेफिनेटली लेबर का भारत जैसे देशों में बहुत बड़ा योगदान है। मैंने कल आप लोगों को बताया था कि किस तरह से धीरे धीरे, चूंकि लेबर की डिमांड बढ़ रही है, लेबर संघों की ताकत बढ़ रही है, तो जो इंडस्ट्रियलिस्ट है कोशिश करते हैं कि उनको अपने यहाँ लेबर न रखने पड़े, और रखने भी पड़े तो बहुत थोड़े से रखने पड़े ताकि कोई संकट पैदा ना हो। इसीलिए फिर और कॉन्ट्रैक्ट पर लेबर लेकर के चलने की प्रथा चल गई कि भैया एक ठेकेदार रहो, उससे कहो कि हमको 500 लेबर चाहिए, वो आपको 500 लेबर दे देगा, और इसके बाद फिर आप जब भी चाहें उनको कम कर दीजिए, जब भी चाहें बढ़ा दीजिए। तो वो लेबर वो कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू अब उद्योगों में आ रहे हैं, तो वहां भी उनका कहीं ना कहीं बीच में शोषण हो रहा है। तो ऐसी स्थितियों में एक प्रैग्मेटिक व्यू हमारे पास होना चाहिए, जिसको आप कह लीजिए कि एक व्यावहारिक व्यू होना चाहिए। और व्यावहारिक व्यू ये होना चाहिए कि निश्चित रूप से श्रमिकों को भी सामाजिक सुरक्षा मिले। न्यूनतम मजदूरी की बात सरकार कह ही रही है कि उनकी न्यूनतम मजदूरी फिक्स होगी, जो मिनिमम वेजेस होते हैं उससे कम कोई भी नहीं देगा, उनकी थोड़ी सी सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था हो, गारंटी हो, थोड़ी सी रोजगार की गारंटी हो, जो उद्योगों के साथ मिलकर के बैठ करके वो बात की जा सकती है, और कोई ना कोई हल इस तरीके से एक व्यापारिक हल निकाला जा सकता है। तो दोस्तों, ये जो श्रमिक की हड़ताल है, ये आपको एक अवसर दे रही है जब आप हमारे यहाँ के जो लेबर लॉ हैं उनको थोड़े से देख सकें, और इनमें किस तरह के रिफॉर्मेशन की जरूरत है, किस तरह के बदलाव, किस तरह के सुधारों की जरूरत है, उन पर आप समझ उन्हें आप समझ सके। कहा जाता है कि बहुत से तो ऐसे कानून हो गए हैं जो सेंटर में कुछ हैं और स्टेट में कुछ हैं, कंट्राडिक्शंस हैं, दोनों में विरोध हैं। दुनिया भर के लॉ हैं, सरकार उनको कम करना चाह रही है, और इसकी शुरुआत करने का श्रेय राजस्थान सरकार को है। उन्होंने अपने यहाँ के बहुत से लेबर लॉ को बदला। देखिए, बहुत से ऐसे लेबर लॉ हैं जो स्टेट गवर्नमेंट खुद, लेबर लॉ के मामले में स्टेट गवर्नमेंट भी काफी स्वतंत्र हैं, वो खुद भी अपने कानून बना सकती है, उनमें बदलाव ला सकती है, और कुछ राज्य सरकारों ने इसकी शुरुआत भी कर दी है, जिसमें राजस्थान को सबसे अधिक राजस्थान को श्रेय जाता है। बाकी स्टेट अब धीरे धीरे करने की कोशिश कर रहे हैं। मित्रों, एक जो दूसरी खबर थी वो मैट की थी। अब मैं आपके कल के आकाशवाणी के समाचार में, और दूसरी कोई ऐसी खबर नहीं है जिसकी मैं विशेष रूप से चर्चा करूं मित्रों, इसीलिए मैं आकाशवाणी के समाचार की बात यहीं खत्म करता हूं। अब मैं आपको आता हूं सिविल सर्विस के प्री के प्रिपरेशन के बारे में आता हूं, और डेफिनेटली इसका संबंध न्यूज से भी है, AIR न्यूज से भी है। मित्रों, एक खबर आपने सुनी थी आज, कल के ही न्यूज में थी, मैट को लेकर के, मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स कि सरकार ने फैसला किया है। मैंने कल इसके बारे में बताया भी था कि फैसला किया है कि अब वो 1 अप्रैल 2015 से पहले किसी भी जो FII है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो इन्वेस्टर्स होते हैं और दूसरे जो पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करते हैं, है ना, इन दोनों के ऊपर अब मैट नहीं लगाएगी 1 अप्रैल 2015 से पहले लेकर के। मैंने कहा था ये वोडाफोन के मामले को लेकर के हुआ, उसको लेकर के फिर एक खबर थी कल की न्यूज में कि कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि इससे सरकार ने 40,000 करोड़ रुपए का सरकारी खजाने का नुकसान किया और कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए। जो भी है, मैं उस पर नहीं जा रहा हूं, मैं एक दूसरी बात पर आ रहा हूं, आपके प्रिपरेशन करने के तरीके पर आ रहा हूं। और आप सिविल सर्विस में जो प्री में जो क्वेश्चन पेपर पूछे जा जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मित्र, उसके चरित्र को समझिए, उसके चरित्र को समझने की कोशिश कीजिए। आप देखेंगे कि यदि आपने ये थोड़ा सा समझ लिया और आप थोड़े से सतर्क हो गए तो प्री क्वालिफाई करना आपके लिए जरा भी मुश्किल नहीं रह जाएगा। मैं क्वालिफाई करने की बात कर रहा हूं, मैं हाईएस्ट स्कोर करने की बात नहीं कर रहा हूं, राइट। जब आप मैट के बारे में न्यूज सुनते हैं, मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स, या इससे पहले आपने मैट के बारे में, इससे पहले भी बातें होती रही हैं, एक हाई कोर्ट ने प्राइवेट कंपनी के फेवर में दे दिया था और इसके बाद फिर सरकार ने घोषणा की कि नहीं, हम इसका अपील अब सुप्रीम कोर्ट में नहीं करेंगे, इस तरह की बातें होती रही और इन पर काफी चर्चा भी हुई, एडिटोरियल कमेंट भी आए हैं और मैंने एडिटोरियल कमेंट आपको नॉलेज सेंटर में प्रोवाइड भी किए। लेकिन चूंकि मेरे पास समय की लिमिटेशंस होती हैं, इसलिए मुझे चुनना पड़ता है कि मैं किसको थोड़े से विस्तार से किस पर चर्चा करूं, किसको छोड़ूं, तो मैंने इस पर चर्चा नहीं की थी। मित्रों, जब भी ऐसी स्थिति आती है तो आपको चाहिए कि आप उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल्स जान लें। मैं बहुत ज्यादा विस्तार में जाने की बात नहीं कह रहा हूं, आपको मैट का कोई एक्सपर्ट नहीं बनना है, लेकिन जो मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स है, ये क्या है, क्यों लगाया गया है, कैसे वसूल किया जाता है, क्यों ये विवाद में आया, विवाद में आने के बाद अब सरकार ने इसे कैसे विड्रॉ किया, क्यों किया, इसके क्या असर हो रहे थे, ये एक जो सामान्य बातें हैं जिसको आप जनरल स्टडीज की बातें कहेंगे, ये आपकी जानकारी में होनी चाहिए दोस्तों। जो इतना बड़ा इतनी बड़ी घटना है मैट की घटना, तो आपको क्या लगता है कि एक सिविल सर्वेंट को नहीं जानना चाहिए? मान लीजिए कि आप फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं या आप इनकम टैक्स में चले गए, ऑफिसर बन गए, आप कस्टम एक्साइज आप रेवेन्यू सर्विस में आ गए, तब क्या होगा? आप ये मत कहिए कि सर तब तो हम उस समय देख लेंगे। नहीं, आप में अभी ही वो क्षमता आपको दिखानी पड़ेगी। तो आप मैट के बारे में थोड़ी सी जानकारी हासिल कर लीजिए, पढ़ लीजिए कि ये क्या होता है। मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स आपको मालूम होना चाहिए कि इस टैक्स का प्रोविजन ऑलरेडी इनकम टैक्स एक्ट में है। ये खासकर जो बड़ी बड़ी जो कंपनीज होती हैं वो करती क्या है कि जब अपने खाते बही बनाती है, बैलेंस शीट जिसको हम कहते हैं, जिसमें वो अपना नफा नुकसान सब दिखाती है और फिर बताती है कि हमारी कंपनी को साल भर में इतना फायदा हुआ, और जो उनको फिर प्रॉफिट होता है, जो उनकी आय होती है खर्चा काटने के बाद जो आय होती जिसको हम इनकम कहते हैं, उस पर टैक्स लगता है और कंपनियां बटने चले कि 30% के लेवल पर आ जाती है, 30% उनको टैक्स देना पड़ता है। यानी कि अगर किसी कंपनी को 1 करोड़ रुपए का फायदा हुआ है तो 30 लाख रुपए का इनकम टैक्स वो देगा। लेकिन इनकम टैक्स लॉ कुछ ऐसा है कि उसमें बहुत से मामलों में छूट दी गई है कि जैसे मान लीजिए कि एक कंपनी को 1 करोड़ रुपए का फायदा हुआ तो उसमें देगा कि अगर आपने इतने का इंश्योरेंस लिया है तो इंश्योरेंस में आपको इतनी छूट मिल जाएगी, अगर आपने इतना डोनेशन दे दिया है फलानी फलानी संस्थाओं को तो छूट मिल जाएगी, आपने अगर अपने कर्मचारियों को शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दे दिया है तो आपको छूट मिल जाएगी। तो इस तरह से ढेर सारे छूट का प्रोविजन है। तो जो कंपनी है वो करती क्या है कि वो ये सारे छूट दिखा देती है अपने खाते में। अब वो है नहीं है क्या है वो बात अलग है, तो खाते में वो छूट दिखा करके आयकर से बच जाती है, आयकर देने से बच जाती है। तो जब सरकार को लगा कि यार ये मामला कुछ ज्यादा ही बढ़ रहा है और लोग इनकम टैक्स देने के लिए ये सारे के सारे तरकीब अपना रहे हैं, तो उसने मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स लगा दिया कि इतना तो अब आपको देना ही पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स। अब आप देखिए कि मैंने ये आपको चीजें बताई, क्या ये कठिन है? क्या इसके लिए इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट होना जरूरी है? नहीं, एक सिंपल सी चीज है, बहुत ही व्यावहारिक सी चीज है। जब आप इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं तो अब क्या होगा, जब भी आप इसके बारे में न्यूज सुनेंगे, जब आप एडिटोरियल कमेंट पढ़ेंगे, जब आप इसके ऊपर आर्टिकल्स पढ़ेंगे, तो आपको बिल्कुल वो समझ में आ जाएगा और यही समझ में आना आपको सिविल सर्वेंट बनाएगा। और मजेदार बात है कि साल भर बाद जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा प्री में, आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं इसी से रिलेटेड होगा। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन पूछ गया कि जो मैट है, मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स है, ये जो लिया जाता है, ये डायरेक्ट टैक्स है या इनडायरेक्ट टैक्स है? मान लीजिए आपसे ये पूछ लिया गया, अब ये आपको ना तो एडिटोरियल कमेंट में अलग से पढ़ने को मिला होगा और ना आर्टिकल में मिला होगा। अगर मिला भी होगा तो इतना ध्यान कौन देता है, पढ़ा होगा उस समय और इसके बाद भूल गया, क्योंकि हमने उस समय उसको आइडेंटिफाई तो किया नहीं कि याद रखना है। अब ये बहुत सिंपल सी चीज है। तो अगर आप मैट का चैप्टर थोड़ा सा निकाल करके पढ़ेंगे, जिसमें आपको 15 मिनट से ज्यादा नहीं लगने हैं, तो वहां आपको क्लियरली मिल जाएगा कि भैया ये इनडायरेक्ट टैक्स है, ये डायरेक्ट टैक्स नहीं है। डायरेक्ट टैक्स तो होता है जिसमें सरकार पब्लिक से सीधे सीधे वसूल करती है। इनडायरेक्ट टैक्स सीधी सी बात है कि इनडायरेक्ट यानी कि कोई मिडिल मैन है, बीच में कोई है, वो इनडायरेक्ट वो सरकार के बिहाफ पर वसूल करता है और फिर वो सरकार को देता है। अब मत कह लीजिए कि सर इनकम टैक्स भी तो एक अफसर वसूल करता है, अफसर सरकार कब के बिहाफ पर नहीं करता, अफसर खुद सरकार ही होता है ना, इसको समझिए। तो आप देखेंगे कि यही मैट कितना आसान हो जाता है दोस्तों। इसी तरह से 3 दिन पहले मैंने आपको बताया था कि विधि आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी, आपने पढ़ा, आपने सुना भी, विधि आयोग के ऊपर आर्टिकल भी पढ़ा आपने, खासकर रिपोर्ट के ऊपर आर्टिकल भी पढ़े। आर्टिकल तो शायद उतने नहीं आए हैं लेकिन कम से कम उसके न्यूज आइटम तो आपने पढ़ ही लिया है। अब आपको ये होना चाहिए कि भाई ये विधि आयोग क्या बला है, हम देखें तो कि ये क्या चीज होती है, क्यों होती है, कैसे बनती है। तो जब आप विधि आयोग का एक छोटा सा चैप्टर निकालेंगे तो आपको उसमें बड़ी खूबसूरत चीज मिल जाएंगी। पहला तो आपको मिलेगा कि साहब ब्रिटिश एज में ही, ब्रिटिश पीरियड में ही विधि आयोग बनने लगा था। फिर आपको मिल जाएगा कि जो चार्टर एक्ट 1833 आया था उसमें विधि आयोग बनाने की बात की थी और पहला विधि आयोग 1834 में बना। अब आपका इतिहास पूरा हो गया, फ्रीडम मूवमेंट की ब्रिटिश की पीरियड का इतिहास का एक चैप्टर आप समझ गए। इसके बाद फिर इंडिपेंडेंट इंडिया के बाद फिर आप देखेंगे कि फिर विधि आयोग बनने लगे और 20वां विधि आयोग ये था, वो तो आपने न्यूज में भी पढ़ा है। फिर आप देखेंगे कि ये जो विधि आयोग है ये किस तरह की संस्था है, तो पता लगेगा तो गवर्नमेंट ऑर्डर से बनी हुई संस्था है, न तो संवैधानिक संस्था है न ये सांविधिक संस्था है, दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। याद रखिएगा, संवैधानिक का मतलब है जो संविधान में है, सांविधिक का मतलब है जो पार्लियामेंट में एक्ट के द्वारा लाया गया है, ये दोनों ने ये गवर्नमेंट के ऑर्डर से बना है। फिर आप देखेंगे कि इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य केवल लॉ को रिफॉर्म करना है कि जो कानून है उनके रिफॉर्म के बारे में वो सरकार से सिफारिश करे। ये किसको सिफारिश करती है, लॉ एंड जस्टिस जो हमारे मंत्रालय है उसकी एक सलाहकार संस्था के रूप में ये काम करती है। 20वां था, एपी शाह उसके चेयरमैन थे, जो जस्टिस एपी शाह चेयरमैन थे, और जो मैट को खत्म करने के बारे में भी जो सिफारिश दी, अभी कानून को खत्म करने के बारे में है ना, ये इनकम टैक्स कानून ही भले हो कि इस कानून को खत्म किया जाए, इसके बारे में भी एपी शाह समिति ने ही अभी रिपोर्ट दी थी, इससे पहले रिपोर्ट दी थी, उसके आधार पर मैट खत्म किया गया और उसने अभी रिपोर्ट दी है कि देशद्रोह और आतंकवाद को छोड़कर के मृत्युदंड को समाप्त कर दिया जाए। तो इस तरीके से जब आप विधि आयोग के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं फिर आपके दिमाग में कुछ नहीं रह जाता। मान लीजिए कि साहब अगले साल पूछ लिया गया प्री में कि विधि आयोग के बारे में निम्न में से सही कथनों के समूह को आप पहचानिए, कौन सा तथ्य सही है, तो उसमें यही पूछा जाएगा कि ये गवर्नमेंट ऑर्डर से बना, कि कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है, ये किस डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ है, किस मिनिस्ट्री से जुड़ा हुआ है, अपनी रिपोर्ट किसको देता है, किस चार्टर एक्ट के तहत ब्रिटिश पीरियड में बना, यही 5-7 इन्फॉर्मेशन है जो आपसे पूछी जाएंगी। लेकिन अगर आपने अपनी तैयारी इस तरीके से नहीं की है तो वहां आपको वो बहुत भारी लगने लगा क्या कि बाप रे बाप ये क्या पूछ लिया गया, और यदि आपने इस तरीके से तैयारी कर ली है तो आपको लगेगा यार ये भी कोई पूछने की बात है, ये तो इतना आसान सा क्वेश्चन है। तो मित्रों सीधी सी बात है कि आसान क्या है कठिन क्या है ये आप पर डिपेंड करता है कि आप उसे आसान बनाना चाहते हैं या आप उसे कठिन बनाना चाहते हैं। मैं आपको आसान बनाने का रास्ता बताने की कोशिश कर रहा हूं, अगर आपको मेरे बताए हुए रास्ते पर चलने पर जरा भी विश्वास है तो आप इसे आजमा कर देख सकते हैं। मैं विश्वास दिलाना चाहूंगा कि शायद आपको निराश ना होना पड़े। दोस्तों मैं न्यूज़पेपर्स के बारे में आज फिर बातें नहीं कर रहा हूं, नॉलेज सेंटर पर अवेलेबल हैं, आप देख लीजिएगा। अब मैं बिल्कुल लास्ट में आता हूं जो ईमेल का चरण है। तो सबसे पहले तो दोस्तों मेरे पास एक मेल आया है जो स्टूडेंट का है, हमारे स्टूडेंट का है एकेडमी में जिन्होंने एडमिशन लिया है और जो अभी अक्टूबर कि क्लास में आ रहे हैं और उन्होंने अपना मोबाइल नंबर दिया है कि बता दिया जाए, लेकिन मैं उनके नाम की घोषणा नहीं कर रहा हूं। जिन स्टूडेंट्स ने लिखा है उनको ये जानकारी होगी, मैं इशारे से ही बात करूंगा, महाराजगंज से हैं, वो समझ जाएंगे। वो अपने मेल को फिर से पढ़ें, एक तो उन्होंने अपने मेल में रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं लिखा है और दूसरा कोई संबोधन नहीं है। मैं अपने सारे स्टूडेंट्स से, चाहे वो मेरे श्रोता हों चाहे वो मेरे क्लास में आने वाले हों, मैं दो बातें इस आधार पर उनके कहना चाहूंगा। पहला, जब भी आप इस तरह का कोई मेल लिखते हैं तो देखिए कि जितनी इन्फॉर्मेशन चाहिए उसमें परफेक्ट है कि नहीं है, क्योंकि यदि उसमें इन्फॉर्मेशन परफेक्ट नहीं होंगी तो याद रखिए कि आपकी आदत है, आप मेन एग्जामिनेशन में भी इसी तरीके से लिख के आएंगे। दूसरा, चाहे आप एक सर्वेंट को भी कुछ क्यों न कहें, लेटर क्यों न लिखें, संबोधन होना चाहिए और वो रेस्पेक्टफुल संबोधन होना चाहिए। संबोधन का न होना आपके बहुत ऊंचे ईगो को प्रदर्शित करता है, जिसे बहुत खतरनाक माना जाता है, और ये जो चीज है इंटरव्यू में एक तरह से पर्सनालिटी को डैमेज कर देती है। मित्रों, तो इसके माध्यम से ये दो पॉइंट्स मैं शेयर करना चाहूंगा, और यदि वो चाहते हैं कि उनका नाम घोषित उनका मोबाइल नंबर लोगों को बताया जाए तो ये सुधार करके वो अपना मेल फिर से भेज सकते हैं। मित्रों, स्टूडेंट हैं खासकर, मैं बताना चाहूंगा, जो खासकर रजिस्ट्रेशन कराते हैं, जिस दिन वो रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं उस दिन से ही एकेडमी के साथ उनका एक अप्रत्यक्ष समझौता हो चुका होता है, और वो समझौता ये कि वो एकेडमी पर विश्वास कर रहे हैं कि एकेडमी उनके सपनों को पूरा करने में उनकी मदद करेगा, और एकेडमी भी उनको विश्वास दिलाता है कि वो उनकी मदद करेगा, और इसके तहत ही जिस दिन से वो रजिस्ट्रेशन कराते हैं वो मान करके चले कि उनकी ट्रेनिंग शुरू हो चुकी है, और ये उसी ट्रेनिंग का हिस्सा है कि आपको मालूम होना चाहिए कि मेल कैसे लिखा जाता है या कोई पत्र कैसे लिखा जाता है, एप्लीकेशन कैसे लिखी जाती है, किसी को संबोधित कैसे किया जाता है, किसी से बात की शुरुआत कैसे की जानी चाहिए। मुझे मालूम है मित्रों कि ये सब बातें अच्छी नहीं लगती हैं, लेकिन यदि मैं आप लोगों के सिर्फ अच्छे लगने और बुरे लगने के आधार पर यदि निर्णय लूंगा तो मुझे मालूम है कि वो आपके लिए ही हितकर नहीं होगा। तो जब भी मुझे कभी ऐसा कुछ करना पड़े तो प्लीज पहले से ही मैं उसके लिए आप लोगों से क्षमा चाहूंगा। मित्रों, अब मैं एक मेरे पास मेल आया है वेंकटेश पटेल हिम्मतनगर का, गुजरात से। वेंकटेश, आपने लिखा है कि आपका कांस्टेबल में सिलेक्शन हो गया है लेकिन आप आईएएस में अपीयर होना चाहते हैं, आपके यहाँ इसको लेकर के द्वंद्व चल रहा है ज्वाइन करने को लेकर के। देखिए, मैं लगातार ये बात कहता रहता हूँ कि आईएएस का जो एग्जाम है बहुत ही अनसर्टेन है, हो न हो पता नहीं, और मुझे नहीं लगता है, मैं तो कभी ये मानता ही नहीं हूं कि कोई भी नौकरी, किसी भी तरह की नौकरी आईएएस बनने में आपकी बाधा बन सकती है, मैं तो कम से कम नहीं मानता। इसलिए मैं तो हमेशा इसी बात को एनकरेज करता हूं कि जब अगर आपको कोई नौकरी मिल रही है तो आपको बिल्कुल ज्वाइन कर लेना चाहिए। यदि आप में वो जज्बा है बनने का तो आप वहां भी तैयारी कर सकते हैं। मुझे इसमें कहीं कोई जरा भी शंका नहीं लगती। और यदि वो जज्बा नहीं है तो खाली व्यक्ति भी अगर रात दिन भी पढ़ रहा है तो उसका बनना हमेशा संदेहास्पद बना रहता है। तो मित्रों, इसी के साथ ही अब मैं अंत में उन सभी को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने मेल लिखे हैं। उनमें से कुछ दोस्तों के नाम हैं, वरुण पांडे इलाहाबाद से, पंकज दिल्ली से, राजगौरव गरखा बिहार से, सिद्धार्थ कांवसी देहरादून से, रजत बोलपुर से, सुरेंद्र सिंह गैरसेण चमोली से, अखिलेश सिंह बघेल इंदौर से, ममता चहर आगरा से, मणिकांत झा दरभंगा से, एम के सिंह छपरा बिहार से, मयंक वर्मा लखनऊ से, सिंपी कुमारी बेगूसराय से। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार। और मित्रों, इसी के साथ ही अब मैं इजाजत चाहूंगा। नमस्कार।